next to the inspiring talks,
सम्मेलन के दौरान प्रेरणा भरे भाषण, संगीत और प्रार्थनाएं जो हृदय छू लेती है के अलावा मुझे कई बहनों द्वारा बताया गया है कि वो जो देखना पसंद करती है जब प्रथम अध्यक्षता और 12 देवदूत के प्रस्तुति अपने पत्नी के साथ मंच पर से जाने के लिए प्रधान बोइट के पेका ने अपने पत्नी डोना के बारे में बोलते हुए कहा, मैं जिस ऑफिस के नियुक्ति हूँ मेरा एक पवित्र जिम्मेदारी है सच बोलना कि वो दोषी है। वो मेरे जीवन का खुशी का जरिए है, कहा प्रधान डीडा एफ उगद्रोफ अपने पत्नी हैरियट के बारे में। प्रधान हेनरी बी आयरिंग ने अपने पत्नी कैथलीन के बारे में कहा, वो एक इंसान है जिसने हमेशा चाहा है कि मैं सबसे बेहतर रहूं। और प्रधान थॉमस मॉन्सन ने अपनी पत्नी फ्रांसिस के बारे में कहा, वो मेरे जीवन का प्यार था, मेरे भरोसेमंद साथी और मेरा करीब का दोस्त। ये कहना कि वो मुझे याद आती है मेरे भावनाओं के गहराई को नहीं दिखलाता। मैं भी अपने प्रीतम पति क्रेग के लिए अपना प्रेम जाहिर करना चाहती हूँ। वो मेरे लिए एक बहुमूल्य उपहार है। मेरे पति के विषय में मैं कुलपति आशीर्वाद में एक चहिता और पवित्र वादा लिखा है कि मेरे और मेरे बच्चों के जीवन उनके द्वारा अच्छी परवरिश पाएगा। मुझे तो ये साफ दिखता है कि क्रेग उस वादे को पूरा करता है। आज मैं पतियों, पिताओं, भाइयों, बेटे और चाचा मौसा का सम्मान करना चाहता हूँ जो जानते हैं वो कौन है और जो परमेश्वर के दिए भूमिकाओं को अच्छी तरह निभाना रहे हैं। कृपया ये जान लीजिए कि मैं जानती हूँ कि पवित्र पतित्राव मातृताव और विवाह की चर्चा कई लोगों के लिए चिंताजनक हो सकती है। मैं जानती हूँ कि कुछ गिरजाघर के सदस्य को लगता है कि उनके परिवार कभी आदर्शवादी परिवार नहीं बन पाए। कई लोग पीड़ित है ठुकराने जाने से दिव्या भर और गलत परंपराएं और संस्कृति के कारण। मुझे यकीन है कि एक पति अपने पत्नी के लिए सबसे आकर्षक लगता है जब वो अपने परमेश्वर के द्वारा दिए पुरोहित रखने वाले को भूमिका को पूरा करता है। मैं प्रधान पेका के इन शब्दों को पसंद और प्यार करती हूँ। तुम्हारे पास प्रभु के द्वारा दिया गया पुरोहित की शक्ति है अपने घर की रक्षा के लिए। कुछ समय ऐसे आएगा जब तुम्हारे परिवार और शैतान के बीच खड़ा होगा ये शक्ति रक्षा करने के लिए। कुछ पहले इसी वर्ष मैं एक अनोखे और साधारण व्यक्ति के अंतिम संस्कार में गया, मेरे पति के फुफा डोन का। फुफा डोन के एक बेटे ने अपने बचपन के अनुभव बतलाया। उसके माता पिता के घर खरीदने के बाद ये हुआ था, क्योंकि परिवार में खिलाने और पहनाने के लिए 5 बच्चे थे, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे आंगन में घेरा लगाने के लिए। उसने परिवार की रक्षा करने की भूमिका को गंभीरता पूर्वक लिया। फुफा डोन ने धरती में कुछ लकड़ी के खंभे डाला, कुछ रस्सी ली और आंगन को घेर दिया। उसने उसे खंभे और रस्सी दिखाई और समझाया उन्हें कि अगर वे घेरे के अंदर रहेंगे वो सुरक्षित रहेंगे। एक दिन भेंट करने वाले शिक्षक आए और देख रहे गए कि कैसे 5 छोटे बच्चे आज्ञाकृत से रस्सी को अंदर देखा और एक छोटा बच्चा दौड़ा अपने पिता को लाने के लिए, जिसने जवाब में दौड़कर गेंद ला लिया। बाद में अंतिम संस्कार में सबसे बड़े बेटे ने रोते हुए कहा कि उसने हमेशा इस जीवन में अपने प्रिय पिता जैसा बनना चाहता है। प्रधान एजरेटिव बेंसन ने कहा, हे इज़राइल के पतियों और पिताओं, तुम अपने परिवार के उदाहरण और अनंतता के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। इज़राइल में पिता होने का अपने पवित्र नियुक्ति को याद करो। तुम्हें ऐसा घर बनाने में मदद करनी चाहिए जहां प्रभु की आत्मा रह सके। अगर नामुमकिन नहीं तो कठिन तो होगा वचनबद्ध पुरुष होना इस दुनिया में, जहां उनके दिव्य भूमिका और जिम्मेदारी को ही नहीं कम महत्व दिया जाता है। असली आदमी का मतलब गलत नहीं निकालता है, एक गलत संदेश है। वे सब मेरे बारे में है, तराजू की दूसरी ओर एक कम आवश्यक और हंसी उड़ाने वाला संदेश है कि पतियां और पते पिताए अब जरूरी नहीं है, क्योंकि उससे जलन हो रही है। उससे जिनके पास ये पवित्र भूमिका है, उसने तय किया सभी मानव समाज उन्हीं की तरह आशाहीन हो जाए। भाइयों और बहनों, हमें एक दूसरे की जरूरत है। वचनबद्ध महिला और पुरुष होने के नाते हमें एक दूसरे को उन्नति तक पहुंचाना है और मदद करना है प्रभु के लोग बनाने में। हम एल्डर रॉबर्ट डी हेल्स और उनकी पत्नी मेरी की तरह कर सकते हैं इस कहावत को अपनाकर। तुम मुझे मदद करो और सहारा दो और मैं भी वैसा करूंगा और हम साथ प्रगति करेंगे। हम धर्मशास्त्र में से जानते हैं कि मनुष्य के अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसीलिए हमारे स्वर्गीय पिता ने उसके लिए एक सहायक बनाया। ये शब्द सहायक का मतलब है एक मदद करने वाला जो उनके समान, उसके लायक और उससे मेल खाने वाला। उदाहरण के तौर पर हमारे दो हाथ एक जैसा है मगर एकदम एक जैसा नहीं है। वास्तव में वो एक दूसरे के विरोध है, मगर साथ अच्छे लगते हैं और सुंदरता बढ़ाते हैं। साथ काम करने से वो ज्यादा ताकतवर है। गिरजाघर के हैंडबुक में ये लिखता है, स्त्री और पुरुष की आत्माएं ऐसी है वो एक दूसरे को संपूर्ण करता है, एक दूसरे को संपूर्ण, न कि एक दूसरे से मुकाबला। हम यहाँ मदद करने, उन्नत और आनंद मनाने के लिए है। बहन बाबरा बी स्मिथ ने सिखलाया, कितना ज्यादा और खुशहाली मिल सकती है जब हम एक दूसरे के सफलताओं से खुश होंगे। जब हम मुकाबला करने के बजाय समर्पण करेंगे, तब कितना आसान हो जाएगा प्रोत्साहन देना। जब मैं कई छोटे बच्चों की जवान माँ थी, मैं कितनी खुशी होती थी इस प्राथमिक गीत से। मैं कितना खुश होती हूँ जब पिताजी घर आते हैं। मुझे दुख होता है ये बतलाना कि मैं हमेशा हंसमुख नहीं होती थी। क्रेग दरवाजे से थके मंदे काम से घर आते थे। वो हमेशा हम सबको गले लगाकर और चुम्मा देकर मिलता था, जिससे कठिन और जटिल समय खुशहाल पिताजी का समय हो जाता था। मैं काम रोककर और पवित्र परिवार समय के आनंद लेती और उससे धन्यवाद देती अक्सर हमारे जीवन को आशीर्वाद देने के लिए। गिरजाघर की एक बहन ने मेरे साथ अपनी एक गहरा चिंता, जिसके बारे में वो प्रार्थना कर रही थी। उसका चिंता था वोट की बहनों से। वो कह रही थी कि उसे दुख होता था कि वे अपने पतियों से अनादर से बात करते देखना और उनके बारे में भी अपने बच्चों के सामने। उसे तब मुझे बताया कि जब वो एक जवान महिला थी, तब उसने दिल से चाहा और प्रार्थना किया कि वो एक योग्य पुरोहित रखने वाले मिले शादी के लिए और उसके साथ वो खुशहाल घर बसाए। उसने अपने घर में नहीं देखा, मगर मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने उसे आशीर्वाद दिया ये जानने के लिए कि कैसे वो अपने पति के साथ एक घर बसाए जहां आत्मा मौजूद रहे। मैं उसके घर गई हूं और गवाही देती हूं कि वह एक पवित्र जगह है। बहन और भाइयों, कितना बार हम जानबूझकर एक दूसरे से दया के शब्द कहते हैं। हम खुद की परीक्षा ले सकते हैं ये सवाल पूछकर। थोड़ी बदलाव के बाद ये सवाल हम सबके लिए सही हो सकते हैं। कब मैंने अपने पति पत्नी के प्रशंसा की थी, चाहे अकेले या हमारे बच्चों के सामने? कब पिछली बार मैंने उसे धन्यवाद दिया, प्रेम जाहिर किया या उसके लिए विश्वास से प्रार्थना किया? कब मैंने अपने आप को कुछ दुख पहुंचाने वाली बात कहने से रोका? कब आखिरी बार हम जब मैंने माफी मांगा और विनम्रता से क्षमा मांगी बिना ये शब्द कहे, पर अगर सिर्फ तुमने ये किया होता या पर अगर सिर्फ ये नहीं होता? कब आखिरी बार मैंने खुश रहने को चुना बजाय सही होने के मार्ग में? अगर इसमें से कोई सवाल से तुम बचे होते या कसूरवार महसूस करते, याद रखिए कि एल्डर डेविड ए. बेडनर ने सिखलाया है कि कसूरवार महसूस करना हमारे आत्मा के लिए वैसा है जैसे पीड़ा शरीर के लिए. एल्डर जेफरी आर हॉलैंड ने सिखलाया, भाइयों और बहनों, इस लम्हे अनंत कोशिश में जब हम हमारे उद्धारकर्ता के जैसा बनना चाहता है, हम संपूर्ण पुरुष और महिला बने सिर्फ इस तरह से अभी के लिए किसी को अपने बात से हानि ना पहुंचाए. इस मौके के लिए तैयारी करते समय आत्मा ने मुझे सिखलाया है और मैंने तय किया कि मैं दया के शब्द अक्सर अपने चहेते पति और से और उनके बारे में कहूंगी, ताकि अपने परिवार के पुरुषों को ऊंचा दर्जा दूं और उन्हें धन्यवाद दूं. क्या तुम मेरे साथ पवित्र आत्मा की मदद को ढूंढेंगे ताकि वो हमें सिखलाए हम कैसे एक दूसरे को समर्पण करें अपने नए भूमिका में? मैं जानती हूँ कि यीशु मसीह के प्रायश्चित के शक्ति और हमारे विश्वास के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं. मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम उन पर भरोसा करें कि वो मदद करेंगे खुशी और आनंद से जीने में. यीशु मसीह के नाम से आमीन.